छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ 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 मेरे बाबा है साथ
ओम शांति। एक अत्यंत ईमानदार और नेक व्यक्ति अपनी एक दुकान चलाता था। वो दवाइयों की दुकान थी, मेडिकल स्टोर। कौन सी दवाई कहां रखी है, उस दुकानदार को सब पता था। जो भी लोग उसके पास आते थे उनको उचित दवाई उचित दाम पर वो देता था। फार्मेसी का उसका ज्ञान पूरा था, परंतु वो अत्यंत नास्तिक था। भगवान, भक्ति, प्रभु प्रेम, ये सब चीजें उसके लिए व्यर्थ थी। सारे दिन भर वो अपनी दुकान में काम करता और शाम के समय उसे एक आदत थी पत्ते खेलने की। तो जब भी उसके कोई मित्र आ जाते तो वो ये काम करता। एक शाम जब बहुत बारिश हो रही थी तब उसके कुछ मित्र वहां आते हैं और दुकान में अभी कोई आया नहीं है कुछ दवाइयां लेने के लिए। और अंधेरा है, लाइट गई हुई है, मोमबत्ती के प्रकाश में वो अपने मित्रों के साथ ताश पत्ते खेलने बैठ जाता है, और तभी एक छोटा सा बच्चा आता है, अपनी जेब से पर्ची निकालता है और कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, शहर के दवाइयों के बाकी दुकान बंद है, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। ये दुकानदार उस दिन पत्ते खेलने में इतना व्यस्त है कि उसे ये व्यवधान लगता है, पहली बार तो ध्यान नहीं देता, दूसरी बार बाहर आता है, पर्ची लेता है, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या लिखा है, और दवाई की एक शीशी निकालता है, उस बच्चे को देता है, पैसे लेता है, पैसे काटता है, बाकी पैसे वापस करता है, बच्चा चला जाता है। जब उसके मित्र वहां से जाने लगते हैं, अचानक उसके मन में विचार आता है कि मेरे से शायद कोई गलती हो गई, वो जो बच्चा आया था पर्ची लेकर और जो दवाई उसे देनी थी उसकी जगह मैंने उसे कुछ गलत दवाई दे दी है, चूहे मारने की दवाई दे दी है। अब उसे चिंता होने लगती है, अब क्या होगा, अब उस बच्चे का नाता ना पता कहां ढूंढूं, अब वो दवाई उसकी मां को खिलाएगा और उसकी मां मर जाएगी। बेचैनी होने लगती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्या करूं क्या नहीं, समझ नहीं आता है। उसके मेडिकल स्टोर में वो देखता है एक चित्र है शिवलिंग का, जो उसके पिता ने उसे कभी दिया था, पर उस पर अब धूल जमी थी। सोचता है क्या करूं, और सुना है संकट के समय भगवान ही एक आधार है, सहारा है। वो उस चित्र के सामने जाता है करबद्ध और प्रार्थना करने लगता है कि मुझे भगवान में तो विश्वास नहीं है, परंतु आज मैं आपकी शरण में आता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या करूं। और वो रोने लगता है। कुछ समय बीतता है और वही बच्चा फिर वापस आता है, रो रहा है, बारिश तेज है, भीगा हुआ है। वो बच्चा कहता है कि आपने जो शीशी दी थी मेरे घर के सामने, पानी इतना जमा था कि मैं गिर गया और इस शीशी टूट गई, क्या आप मुझे दूसरी वैसी ही शीशी दे सकते हैं। दुकानदार की जान में जान आती है, पर वो बच्चा कहता है ये दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार कहता है पैसे की जरूरत ही नहीं, तुम ये लो दवाई। और उस बच्चे को दवाई देता है। बच्चों की, उस बच्चे की आंखों की निरागसता उसे आकर्षित करती है और पहली बार उसे उस परम सत्ता का भी अनुभव होता है जो मनुष्य शक्ति से परे है, और उसे विश्वास होता है कि इस संसार का नियंता कोई और है। विश्वास, श्रद्धा, फेथ, बिलीफ, और भगवान इन सभी शब्दों के लिए एक शब्द कहता है, कौन सा, निश्चय। ब्राह्मण जीवन में निश्चय की भी एक यात्रा है, बहुत सारी यात्राएं हैं, उसमें निश्चय की भी एक यात्रा है। अमृत वेले अपने जीवन की सारी यात्राओं को देखना है जो हमने तय की है। ब्राह्मण जीवन की यात्रा, संबंधों की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, सेवा की यात्रा, मधुबन में रहने की यात्रा, लौकिक जॉब की यात्रा कैसी रही, कितनी निर्विघ्न रही, ज्ञान की यात्रा, ज्ञान के समझ की यात्रा, योग की यात्रा, जब से आए तब से अब तक योग की गुणवत्ता कैसी रही, धारणाओं की यात्रा, मर्यादाओं की यात्रा, और ये यात्रा जो आज बताई, निश्चय की यात्रा। निश्चय एक है या अनेक? बाबा ने कहा, बहुत सारे प्रश्न पूछे, सभी को निश्चय है, सभी निश्चय बुद्धि बैठे हुए। अगर सभी निश्चय बुद्धि है तो परसेंटेज क्यों? अगर सभी निश्चय बुद्धि है तो ये माला में अंतर क्यों? अगर सभी निश्चय बुद्धि है तो 8, 100, 1600 क्यों? अगर सभी निश्चय बुद्धि है तो गायन और पूजन में अंतर क्यों? नंबरवार क्यों? और उत्तर दिया, निश्चय बुद्धि भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जो जानते हैं, जिन्होंने समझा है, जान लिया है, बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है। दूसरे, जिन्होंने मान लिया है कि बस यही सत्य है, इसके अतिरिक्त तो और सत्य कुछ नहीं है, इसलिए तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने। अगर निश्चय ना होता तो क्यों बनते? तीसरे, जिन्होंने जाना भी है, जिन्होंने माना भी है, और जो चल रहे हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात किया है, धारण किया है, अंगीकार किया है, जीवन में उतारा है, श्रीमत ही जिनका जीवन है, श्रीमत ही जिनका जीवन है। ऐसे बच्चे तो ये अव्यक्त वाणी में, इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने निश्चय की बात की है। कौन कौन से निश्चय है ब्राह्मण जीवन के? पहला, स्वयं में निश्चय। दूसरा, भगवान में निश्चय। तीसरा, इस परिवार में निश्चय। लास्ट संडे की मुरली, ये छोटा अलौकिक सुंदर परिवार है। इस परिवार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ है, एक एक आत्मा विशेष है। इस परिवार सतयुग की तुलना में अति न्यारा और अति प्यारा है। इस परिवार की एक एक आत्मा राज्य अधिकारी राजा है। इस परिवार की एक एक आत्मा ताज तख्त और तिलकधारी है। एक 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 बाप, एक परिवार, एक ज्ञान, एक लक्ष्य, एक भाषा, एक दृष्टि, एक वृत्ति, एक धर्म, एक कर्म, 9 की 9 बातें एक है। यहां पर सतयुग यही है। सतयुग की परिया तुम हो, ज्ञान योग के पंख तुमको मिले हैं। दास संडे की मुरली, परिवार में निश्चय। चौथा, ड्रामा में निश्चय। पांचवा, भगवान जो ज्ञान सुना रहा है उस ज्ञान में निश्चय। अगला, इस यज्ञ में निश्चय, मधुबन में निश्चय, ब्रह्मा में निश्चय, उसके द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान उसमें, सृष्टि चक्र में निश्चय, संगम युग में निश्चय, ब्रह्मा इसी ब्रह्मा के ही तन में भगवान आया है इस बात में निश्चय, और विनाश। विनाश का क्या? लास्ट मोमेंट में बाबा कहते कि विनाश वगैरह कुछ नहीं होना है, तो इसी तन में आत्मा देवता बन जाओगे, हम क्या कहेंगे? ना, उसमें भी निश्चय। और किसमें निश्चय? और किसमें निश्चय? और किसमें निश्चय? अपने श्रेष्ठ भविष्य में निश्चय। हम ही थे, हम ही बनेंगे, इस बात में निश्चय, अपने पांचों स्वरूपों में निश्चय। अभी अभी गृह कार्य दिया है बाबा ने, हर दिन 5 सेकेंड से लेके तो 5 मिनट तक क्या करो, 5 स्वरूपों का अभ्यास। अच्छा आज याद आया, बहुत दिन बीत गए, ऐसा भी कुछ कहा था। कल से करेंगे अब। और किसमें निश्चय? पुरुषार्थ में निश्चय, अपने संकल्पों में निश्चय। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात हर संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति, हर संकल्प को साकार में लाने की शक्ति, अपने किए हुए वायदों में निश्चय, प्रॉमिसेस में निश्चय। यह हमारी प्रतिज्ञा है अखंड ब्रह्मचर्य की, संपूर्ण पवित्रता की। और किसमें निश्चय? अपने लक्ष्य में निश्चय। और किसमें निश्चय? अपने स्वरूप में निश्चय। आत्मा का ये मेरा स्वरूप है, यही वास्तविक स्वरूप है। नए जन्म में निश्चय, ब्राह्मण जीवन में निश्चय, इस परिवार की एक एक आत्मा महान है इस बात में निश्चय, नएपन में निश्चय। पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी है। लास्ट संडे की मुरली, इस संसार से वैराग्य, इस बात में निश्चय, हर बात में निश्चय। आज की साकार मुरली में बाबा ने 8 निशानियां बताई है, अव्यक्त मुरली में। कौन सी निश्चय की बातें बताई? सबसे पहला विक्ट्री, सबसे पहला निशानी विक्ट्री। विक्ट्री अर्थात जीत, विक्ट्री अर्थात विजय, विक्ट्री अर्थात क्या? सफलता, कामयाबी, सक्सेस। दूसरों को हार दिखाई दे रही है पर उस हार में भी जीत। जिनकी ये हार होगी वो बाप के गले का हार बनेंगे। हार में हार समाया हुआ है, सर्कमस्टांस कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी विकराल हो, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से विजय का अनुभव करेंगे। ये निश्चय। ब्राह्मण परिवार भी शायद सोचने लगे कि इनकी हार हो गई, उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। किस कारण? क्योंकि नम्र है, निर्माण है, हाजी का पाठ वाले है, इसलिए दिखाई दे रहा है ये कमजोर है। हार हुई है परंतु निश्चय बुद्धि वालों को कभी शक नहीं है, कभी संशय नहीं है, निश्चय है जीत हमारी ही होगी, अंततः विजय मेरी है। ये विश्वास, ये निश्चय, ये फेथ, ये बिलीफ स्वयं में, एक अत्यंत ईमानदार व्यक्ति बूढ़ा है, रास्ते से जा रहा है, देखता है एक पर्स पड़ी हुई है, उठाता है और तब तक एक महिला एक पुलिस को लेकर आती है, कहती है यही है वो जिसने मेरी पर्स चुराई है, पकड़ लो इसे, यहीं पे गिरी थी और इसके हाथ में है। वो पर्स छीनती है और देखती है उसमें पैसे नहीं है, कहती है इसने पैसे चुरा लिए, मेरे पैसे निकालो। वो कहता है जब मैंने इसे देखा इसमें पैसे थे ही नहीं। वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, मुझे अपने बच्चे की फीस भरनी है कल। सिंगल मदर, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ही नहीं, परंतु वो कहती है कि थे इसमें पैसे। तो वो व्यक्ति पैसे निकालता है अपनी जेब से और उसको दे देता है। पुलिस को उसके साथ आगे की कार्रवाई के लिए छोड़कर वो महिला वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन वो एक लाइन में खड़ी है, स्कूल के पास जा रही है उस लाइन में पैसे भरने के लिए। वही व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसे लगता है कि ये वापस चोरी करने आ रहा है, और वहां पर वही पुलिस वाला खड़ा है दूर। वो फिर से उस पुलिस वाले के पास जाती है, कहती है कि ये वह व्यक्ति मेरा फिर से पीछा कर रहा है। तब तक उस व्यक्ति को पसीने आ रहे, वो गिरने की हालत में होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। पुलिस वाला बताता है कि वो पैसे जो कल इसने तुमको दिए, ये तो उसके खुद के पैसे थे, पर जब उसने सुना कि तुम्हारे बेटे की फीस भरने का लास्ट डे है, उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर तुमको दिए थे। वो अपनी पर्स फिर से खोलती है, देखती है उसमें डबल पैसे है, और उस गिरते हुए बूढ़े व्यक्ति को वो लोग संभालते हैं और उससे पूछते हैं, आज तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे थे? वो कहता है, मैं ये देखने आ रहा था कि कोई दूसरा तुम्हारा पर्स चोरी ना कर दे। सच्चाई की हार नहीं होती, विजय है समाई। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हाजी का पाठ विनम्रता, नम्रता, निर्माण चित्त, परंतु निश्चय बुद्धि आत्माओं को क्या विश्वास है कि जीत हमारी है, हार में भी जीत है, शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। ये सबसे पहली निशानी कि हमारी ही जीत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयं भगवान हमारे साथ है, ये निश्चय। स्वयं भगवान से हमारे सारे संबंध है, ये निश्चय। भगवान छत्र छाया है, ये निश्चय। हाथों में प्रभु का हाथ है, ये निश्चय। और जब तक वो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। सबसे पहली निशानी विक्ट्री, दूसरी निशानी नो कंफ्यूजन, कोई दुविधा नहीं, राइट है या रॉन्ग है, स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति भी। क्या करेंगे? जो भी निर्णय लेंगे वो सत्य होगा, सरल होगा, स्पष्ट होगा। सत्य, सरल, स्पष्ट, हां और ना का जो निर्णय है, जरा भी दुविधा नहीं, नो कंफ्यूजन। विजयी का मन, क्या कहा बाबा ने शब्द, विजयी का मन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है। हर निर्णय स्वयं का, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति, उनका जो होगा वो कैसा होगा, सरल, स्पष्ट और सत्य होगा। यह निश्चय बुद्धि आत्माओं की दूसरी निशानी है। नहीं तो मन में दुविधा होती है कि जो मैंने सोचा, जो मैंने निर्णय लिया, वो सत्य है असत्य है, श्रीमत अनुसार है या मनमत परमत है। कंफ्यूजन की अवस्था, दुविधा की अवस्था, डिलीमा की अवस्था, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, जहां मैं हूं, जहां ड्रामा ने मुझे रखा है, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। जो लोग मेरे इर्द गिर्द है, वही लोग बेस्ट पीपल, और जिस स्थान में हूं, बेस्ट स्थान, बेस्ट टाइम है ये। जिन लोगों के बीच हूं, जिस स्थान में हूं, जिस समय में हूं, ये स्थान, ये समय, ये व्यक्ति, ये परिस्थितियां, इसी में मेरे जीवन का उत्कर्ष है। अंग्रेजी में एक किताब है, ऑब्स्टेकल इज द वे। एक लेखक ने किताब लिखी है, विघ्न जो है वही मार्ग है, वही रास्ता है। विघ्न को विघ्न नहीं समझना है, विघ्न को रास्ता समझना है। ऑब्स्टेकल इज द वे। तो जहां भी मुझे ड्रामानुसार रखा गया है, वहीं पर मेरी सर्वोत्तम उन्नति हो सकती है। ये निश्चय, ये विश्वास, ये फेथ, ये बिलीफ, कोई दुविधा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे कहा, निश्चय की भी यात्रा है, हार भी होगी, पर हार से फिर खड़े हो जाना, फिर चालू हो जाना, आगे 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 अपनी हार से सीखते जाना। अपनी कंफ्यूज्ड माइंड की जो स्टेज अतीत में थी, पास्ट में थी, उससे भी सीखते जाना और आगे बढ़ना। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी, दुविधा नहीं, नो कंफ्यूजन। तीसरी निशानी, स्पिरिचुअल प्लेजर, रूहानी मौज में रहेंगे। तीसरी निशानी, रूहानी मौज में रहेंगे। आग समान परिस्थितियां है, परंतु अग्नि परीक्षा भी क्या अनुभव होगी, खुशी का अनुभव होगा, विजय की खुशी का अनुभव होगा। जैसे दुनिया में मौज मनाते हैं जब कोई जीतता है, अगर किसी चुनाव में कोई नेता जीत जाता है, कितना बड़ा जश्न होता है। वैसे सोचो, इस परिस्थिति में मैं जीत गया हूं तो खुशी मनाओ, नाचो गाओ, रूहानी मौज में रहो, मूंझना नहीं, रूहानी मौज में। यह निश्चय बुद्धि की तीसरी निशानी, रूहानी मौज की अवस्था। चाहे आग हो, आग आग समान परिस्थिति हो। नीचे पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा कृष्ण का उदाहरण, नाच रहा है नीचे परिस्थिति, ऊपर हम, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, हर परिस्थिति से शक्तिशाली मैं हूं, हर समस्या से बड़ा मैं हूं, समस्या मेरे सामने छोटी है। हम हिमालय, वो चींटी, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी जो हम पर चढ़ सके। नो कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल प्लेजर, अर्थात रूहानी मौज। अगर रूहानी मौज नहीं है, अर्थात निश्चय बुद्धि नहीं। बाइबल में वर्णन है, एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो कि जीसस क्राइस्ट का सबसे अनन्य शिष्य है। बाकियों में प्यार है 11, पर यह जो है इससे सबसे ज्यादा प्यार है। पर उसी के लिए जीसस क्राइस्ट एक भविष्यवाणी कहता है कि जब ऐसा समय आएगा तुम मुझे नकार दोगे 3 बार। वो कहता है मैं कभी नहीं हो सकता प्रभु, कभी नहीं। मेरा संपूर्ण निश्चय है आप पर कि आप ही मसीहा हो। जीसस कुछ नहीं कहता है। दिखाया है मध्य रात्रि के समय एक शिष्य धोखा देता है, जुड़ास, और वो सैनिक आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है ईसा मसीह यहां है और उसे पकड़ के ले जाते हैं। परंतु पीटर, वो भी पीछे पीछे चला जाता है, और वो जो गेट होता है जिसके अंदर उसे ले जाते हैं, सजा दूसरे दिन उसे सुनाई जाने वाली थी, वो भी अंदर घुस जाता है। अंदर उसे धक्का दिया जाता है, जीसस क्राइस्ट को मारा जाता है, अपमानित किया जाता है। वो सारे सैनिक उसकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। रात का समय है और वो पीटर भी वहां जाके छुप जाता है। दूसरे उसको देख के कहते, क्या तुम उस आदमी के साथ थे? वो कहते, कौन आदमी, मैं तो उसे जानता भी नहीं। थोड़ी देर के बाद एक महिला वहां से जाती है, वो कहती है, मैंने तुमको उसके साथ देखा था। वो कहता है, वुमन, आई इवन डोंट नो हिम, मैं तो उसे, मुझे पता ही नहीं वो कौन है। दूसरी बार ठंड का मौसम है, आग सेक रहे सब लोग, एक देखता है उसमें से एक सिपाही, कहता है, क्या तुम उसके फॉलोअर हो? वो कहता है, फॉलोअर, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। बस 3 बार इनकार करता है और वो मुर्गा बांग देता है, और जैसे ही मुर्गा बांग देता है उसे वो बात याद आ जाती है कि मैंने ही अपने प्रभु को इनकार कर दिया, मेरा कहां गया निश्चय। और बाइबल में स्टडी ग्रुप, स्टडी सर्कल में इस पर बहुत रिसर्च है कि पीटर ने डिनाय क्यों किया। निष्कर्ष निकाला गया 2 कारण से। एक, उसकी कमजोरी, अपनी कमजोरी। वो हमेशा डींगे हाँकता था कि सबसे ज्यादा विश्वास मेरा आप पर है। वहां उसे पता चला कि मैं तो फेल हो गया। और दूसरा भय, अब इसके साथ क्या क्या होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, इसको छोड़ेंगे नहीं ये लोग, वो मेरे साथ भी होगा। बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, परंतु ये भी दिखाया है उसका, वो जो फेल हुआ निश्चय में, उसके आधार से ही उसे इतना पश्चाताप हुआ कि आगे वही सबका लीडर बना। उसी ने क्रिश्चियन धर्म की सबसे ज्यादा स्थापना की। उसने दूसरों को सिखाया कि मैं ऐसा फेल हुआ था, तुम ना होना। निश्चय की भी परीक्षा होगी। कुछ हो रहा है और कोई कहे तुम ब्रह्मा कुमारीज में थे, कहते नहीं मुझे तो पता ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तुमको माउंट आबू में देखा था वहां पांडव भवन में। मैं कहां है माउंट आबू, मैं तो राजस्थान में ही कभी गया नहीं आज तक। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, निश्चय डगमग, हमें तो पता ही नहीं। हाँ हमारे घर वाले जाते थे। तीसरी निशानी रूहानी मौत की अवस्था। चौथी निशानी अकेलापन नहीं, अकेलापन नहीं। जिन्हें निश्चय है, सारी दुनिया एक तरफ वो एक तरफ, अक्षय उनी सेना एक तरफ, हम एक तरफ, विश्वास है कि बाप मेरे साथ है और जहां वो है उसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो बीज है सृष्टि का चैतन्य, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। परंतु वो मतलब वाला नहीं कि बाबा तुम ही सहारा हो, तुम ही सब कुछ हो। बाप को ही याद दिलाते हैं कि तुम ही सहारा हो, तुम ही सब कुछ हो, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मतलब वाली याद नहीं। अंग्रेजी में कविता है, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड थाउ वर्ट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन थी। लेखिका कवियत्री लिखती है कि सूरज चांद सितारे ये दुनिया ये संसार सब कुछ नष्ट हो जाए और केवल तू अकेला बच जाए, एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन थी, तुझ में सब कुछ समाया हुआ होगा। बाप साथ है तो उस बाप में सब कुछ साथ है, सारी दुनिया सारा संसार उसमें समाया हुआ है, सारी दुनिया एक तरफ हम एक तरफ, सहारे दाता वही है, उसके सहारे के अंदर हम हैं, ऐसा अनुभव। लेट मी हाइड माई सेल्फ इन थी, हे प्रभु तू वो पर्वत है, तेरे अंदर मैं छुप जाऊं, तू वो गुफा है, तुझ में मैं छुप जाऊं, दुनिया में कुछ भी होता रहे मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि स्वयं भगवान छत्र छाया है। तो निश्चय बुद्धि आत्माओं की चौथी निशानी, बेसहारा अनुभव नहीं करेंगे, अकेला अनुभव नहीं करेंगे, छत्र छाया का अनुभव करेंगे। मैं अकेला कभी हूं ही नहीं, मेरे साथ संसार की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सत्ता साथ साथ चल रही है। मैं जहां हूं, जो कर्म कर रहा हूं, जो शब्द बोल रहा हूं, जो सोच रहा हूं, उन उस सोच में, उन शब्दों में, उन कर्मों में, उस सेवाओं में प्रभु की शक्ति जुड़ी हुई है, ये निश्चय। तो निश्चय बुद्धि आत्माओं की चौथी निशानी, कभी भी बेसहारा अनुभव नहीं करेंगे। पांचवी निशानी, खुशी में डांस करेंगे और हद का वैराग्य नहीं और उदासी नहीं। हद का वैराग्य, माया का तेज वार होते ही वैराग, व्यक्ति कार्य सेवा किनारा कर लेते हैं। बाबा ने कहा वैराग्य क्षणभंगुर वैराग्य है, ऐसा वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य, रियल वैराग्य, विवेक से उत्पन्न वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार के होते, एक कारण वैराग, एक विवेक वैराग। कारण अर्थात कोई दुख की परिस्थिति आ गई इसलिए वैराग, विवेक वैराग अर्थात विवेक पर आधारित वैराग। कोई परिस्थिति आई नहीं है फिर भी वैराग है, क्योंकि वास्तविकता को जाना है कि ये क्षणभंगुर है, मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। वैराग और दो प्रकार के, एक शमशानी वैराग, मरकट वैराग, और स्थाई वैराग। मरकट अर्थात बंदर की तरह हाथ डालता है उसमें, घड़े में चने लेने के लिए, फंसता है, बहुत मार खाता है, पिटाई होती है बहुत, और जब पिटाई हो रही होती है तो सोचता है इसके बाद कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, बहुत हालत खराब होती है, नहीं चाहिए ये चने, वैराग है, मिथ्या है ये चने, क्षणभंगुर सुख है इन चनों में, छोड़ो इसको, इससे तो मैं अपने जंगल में अतीन्द्रिय सुख में रहूंगा, ये इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से हाथ बाहर निकला, कुछ दिनों के बाद फिर से दिखा घड़ा, उसमें चने, फिर हाथ डाला, वैराग खत्म। बाइबल में तो उससे भी बड़ा उदाहरण है, प्रसव पीड़ा का, मां का, बहुत वेदना, बहुत वेदना, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, कहती है अब बस फाइनल, इसके बाद नहीं चाहिए कोई, पर फिर वही क्षणिक वैराग्य, हद का वैराग्य नहीं, मजबूरी वाला वैराग्य नहीं। भिखारी कहता है नहीं चाहिए मुझे ये 5-स्टार होटल, नहीं जाऊंगा कभी आज से, यही ठीक है मेरी झोपड़ी, है ही नहीं तो कहां से जाएगा। महात्मा बुद्ध कह सकता है कि मुझे ये राजभवन नहीं चाहिए, पर जिसके पास है ही नहीं, मजबूरी वाला वैराग्य नहीं। पांचवी निशानी उदासी नहीं, कोई उदासी नहीं और हद का वैराग्य नहीं, सदा खुशी में डांस करेंगे, ऐसी अवस्था, निश्चय बुद्धि आत्माओं की। छठवीं निशानी, आठ निशानियां गिनाई है, छठवीं निशानी जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वो अपनी सफलता का, विजय का वर्णन नहीं करेगी, उल्हाने नहीं, इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, खालीपन नहीं, क्योंकि खालीपन है तो आवाज बहुत है, अपनी ही सेवाओं का वर्णन करना और उन उस वर्णन में कंप्लेंट्स करना, उल्हाने, ये खालीपन की निशानी है। जो संपन्न है वो भरा हुआ है, अधगल अध जल गगरी छलकत जाए, एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस, आवाज करता है बहुत, क्यों करता है आवाज, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें। कहा जाता है महात्मा बुद्ध और महावीर समकालीन थे, दोनों की विचारधाराएं अलग थी, दोनों की सिद्धांत फिलॉसफी अलग थी, सब कुछ अलग था, और दोनों के शिष्य एक साथ एक ही समय पर कई बार टकराए थे, वो कहते थे हम बड़े, वो कहते थे हम बड़े, वो कहते हमारे गुरु बड़े बड़े, वो कहते थे हमारे। कहा जाता है, सत्य है पता नहीं, कि दोनों एक साथ एक ही कमरे में 3 दिन रुके थे, महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर। शिष्यों को बहुत उत्सुकता थी, अब कुछ तो होगी गड़बड़, दोनों टकराएंगे, वो कहेगा मैं राइट, वो कहेगा तू राइट, तू रॉन्ग, लड़ाई होगी। बुद्धिज्म के सिद्धांत अलग है, जैनिज्म के सिद्धांत अलग है, बुद्ध ने तो त्याग दिया ये तप, बहुत अति का मार्ग, और जैनिज्म तो अति है तपस्या की, बुद्ध ने ये जाना 6 साल की तपस्या के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कोई मध्यम निकाय, बीच का मार्ग, द मिडल पाथ, पर यहां तो अति है, उपवास और व्रत और तप। दोनों एक साथ एक ही कमरे में 3 दिन रहे, ना उसने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, मौन, बोलने को कुछ है ही नहीं, संपन्न है, आवाज की आवश्यकता ही नहीं है। झगड़े कहां होते हैं? लोअर लेवल पर, हायर लेवल पर कोई झगड़े नहीं है। जैसे जैसे आत्मा संपन्न बनती जाती है, उसकी समझ बढ़ती जाती है और सारे द्वंद्व से परे निकल जाती है, अद्वैत अवस्था आती है, द्वैत नहीं, दो नहीं। शंकर जी और राम जी की लड़ाई हुई, राम जी के बंदर भी लड़ पड़े शंकर जी के गणों के साथ, हमारे बॉस से लड़ाई, बहुत लड़ाई की दोनों ने, बाद में दोनों की फ्रेंडशिप हो गई राम जी और शिव जी की, पर बंदर और गण वो लड़ते ही रहे, सारी लड़ाइयां नीचे की अवस्थाओं में है। जितने धर्म स्थापक है संसार में सब आ जाए आज एक प्लेटफॉर्म पर, दुख होगा उनको, उनमें कोई लड़ाई नहीं है। मोहम्मद पैगंबर और जीसस क्राइस्ट में कोई लड़ाई नहीं है, हिंदुओं के पैगंबरों में और बाकी पैगंबरों में किसी में कोई लड़ाई नहीं होगी, सब आराम से बैठ के चाय पियेंगे। लड़ाई किसमें है? फॉलोअर्स में, अनुयायी में। तो निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी, क्या कहा, छठवीं निशानी, वर्णन नहीं, उल्हाने नहीं, खालीपन नहीं, नो एक्सप्लेनेशन, नो कंप्लेंट्स, नो एम्प्टीनेस, भरी हो की आत्मा, और आत्मा भरती है योग से। 2 दिनों से मुरलियां चल रही है, योग बल, कर्मेंद्रिया शांत हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। योग बल सबसे बड़ा बल है, ज्ञान से भी बड़ा बल है। जैसे भक्ति में संसार में प्रारब्ध बड़ा या पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ, तो यहां पर योग बड़ा, वो बल से आत्मा को भरना है, योग के बल से और ज्ञान के बल से। 7वीं निशानी, सातवीं निशानी, दूसरों को भी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उत्साह, हिम्मत देंगे दूसरों को भी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी सहारेदाता है, किसी को नीचे नहीं गिराएंगे। लास्ट संडे की मुरली दादियों से जो मुलाकात उसमें था, पार्टियों से, क्या कहा था, नीचे नहीं गिराएंगे। अगर कोई रॉन्ग है तो उसे सीधा नहीं कहेंगे तुम रॉन्ग हो, पहले हिम्मत देंगे, पहले खड़ा करेंगे, शक्ति भरेंगे, फिर उसको खुद ही रियलाइज होगा, वो खुद ही समझेगा, वो खुद ही जज कर सकेगा। फिर पहले उसे रिस्पेक्ट दो। तो 7th एनकरेजमेंट, 7वीं निशानी, दूसरों को क्या करेंगे, एनकरेज, करेज, एनकरेज, हिम्मत, हिम्मत बढ़ाएंगे दूसरों की। 8वीं निशानी, अंतिम निशानी, व्यर्थ से मुक्त। नंबर वार क्यों बन रहे, हार क्यों हो रही है, व्यर्थ की वजह से। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं, जहां व्यर्थ है वहां जीत नहीं। तो निश्चय बुद्धि आत्मा अर्थात सभी व्यर्थ से मुक्त। 8 निशानियां हैं। फिर से चालू करते हैं पीछे से। 8वीं, व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से वैराग। सच्चा वैराग कौन सा है, व्यर्थ और निगेटिव से वैराग आ जाए। जहां व्यर्थ बातें हो रही है, व्यर्थ चीजें हो रही है, उन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, रस ही नहीं है ऐसी बातें सुनने में। 7वीं निशानी, हिम्मत देंगे। 6वीं निशानी, वर्णन नहीं, वर्णन नहीं करेंगे। अपनी सेवाओं का बहुत वर्णन करना, मार्क्स कट हो जाते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किया क्या? ईश्वरीय यज्ञ में जो कुछ हो रहा है सब कुछ ऊपर से हो रहा है। कई बार सुनाया इसके पहले, दादी जानकी ने कभी टीचर्स की भट्टी में टीचर्स से प्रश्न पूछा था, अपने आप को क्या समझती हो, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? टीचर्स सेंटर की टीचर्स से पूछा था, अपने आप को क्या समझती हो, सेवादारी समझती हो, निमित्त समझती हो या कठपुतली? कठिन प्रश्न है। सेवाधारी भी बहुत बड़ी अवस्था है, हम सेवा कर रहे हैं, उसके ऊपर है निमित्त, भगवान ने निमित्त बनाया, पर उसमें भी अहंकार हो सकता है कि मुझे निमित्त बनाया है, तुम्हें नहीं, तुम चुप रहो, निमित्त मुझे बनाया है, निमित्त का अहंकार। उसके सबसे ऊपर है कठपुतली का अपना कुछ है ही नहीं, ऊपर से उंगलियां हैं, धागे हैं, डोर। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, थाय विल शैल बी डन। जैसा वो चला रहा है, जहां वो बिठाए, जहां वो रखे, उसको जो कराना है वो करे, मालिक वो है। ये अवस्था। पांचवी निशानी खुशी में डांस करेंगे, हद का वैराग्य नहीं ना ही उदासी ना दुख। जहां निश्चय है वहां उदासी नहीं हो सकती। एक बहुत अमीर व्यक्ति, इतना पैसा उसके पास, अपनी ही खुद की नाव बनाई नौका विहार के लिए, और समुद्र में निकल पड़ा। ऐसा तेज तूफान आया कि नाव उछट गई, लाइफ जैकेट पहना था, समुद्र में कूदा और पता नहीं कहां पहुंच गया, एक वीरान अनजान बिहड़ टापू पर, जहां पर कई दिनों तक अकेला घूमता रहा, कोई नहीं दिखा उसे, चिल्लाता रहा। भगवान में विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेगा, मेरी रक्षा करेगा, जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। पर कितने दिन बीतते गए, उसको बीमारियां भी बहुत थी, पर वहां पर खाने के लिए केवल फल पत्तियां, वहीं रहने लगा। चार दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, भगवान पर विश्वास कम कम होने लगा। अकेला, ना कोई पक्षी ना पंछी, कुछ नहीं उस टापू पे, वीरान सा टापू। सुबह से लेकर रात तक देखता रहता है कोई नाव कहां से आ जाए तो चिल्लाऊं और पुकारूं और आओ मैं यहां हूं। सोचता है शायद जीवन भर इधर ही रहना पड़ेगा, कब तक इस तरह भटकू, क्यों ना अपनी एक झोपड़ी बनाऊं। बहुत मुश्किल से झोपड़ी बनाता है और चैन से सोता है पहली बार रात में, पर अचानक मौसम बदलता है, बिजली कड़कती है उसकी झोपड़ी पर, गिरती गिरती आग लग जाती है। बाहर निकल के चिल्लाता है, प्रभु तू क्रूर है, पत्थर बन गया है, तुझ पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोगों के लिए तू हमेशा बुरा ही करता है उनके साथ। तभी दो लोग भागते हुए आते हैं, कहते हैं हम यहां से जा रहे थे अपनी नाव में, देखा इस टापू में आग लगी है, जरूर यहां कोई मनुष्य होगा, अच्छा किया तुमने तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा दी, नहीं तो हम यहां आते ही नहीं। तब वो फिर से घुटनों के बल गिरता है और कहता है, Thy ways are past our understanding, तू जो करता है वो हमारी समझ से परे है, उसकी प्लानिंग कुछ और है, द डिवाइन प्लानिंग, कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे जीवन में जो हुआ, जो हो रहा है या जो होगा, उसमें कल्याण है। झोपड़ी जल रही है तो समझना दो व्यक्ति आने वाले हैं अभी, कोई शुभ संदेश लेकर, हो सकता है जलने के बाद आए, पर विश्वास रखना कोई तो आएगा। जिस उदासी के वीरान टापू में हम बैठे हैं, जहां पर कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस टापू से हमें वापस ले जाने, वो किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। तुम सब कौन हो, आज की मुरली में क्या कहा, यहां आते हो तो क्या बन जाते हो? चैतन्य ठाकुर, सुना है भक्ति में कि मनुष्य भगवान की सेवा करते हैं भक्त, और यहां पर भगवान तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। कितने बजे से क्या करता है? सुबह सुबह भोग लगा देता है तुमको, चैतन्य ठाकुरों को। चार बार, पांच बार, कितनी बार, कहां आए हो? भगवान के घर, घर ये है या वो, ये घर से आए हो या घर में आए हो? घर में आए हो फिर वो क्या है जहां रहते हो? सेवा स्थान तो सेवा केंद्र है, घर क्या है? ऑफिस तो सेंटर है, हेड ऑफिस तो ये है, हेड ऑफिस सेंटर ऑफिस तो घर क्या है फिर? वो भी सेवा स्थान, उधर से इधर आए हो और यहां आकर क्या है सबको? आराम। आराम है या ज्यादा काम है? तन का आराम, मन का आराम, धन का आराम, यह सोचना पड़ता है आलू कितने किलो है, आज कौन सी सब्जी बनानी है, तेल का भाव बढ़ रहा है, कुछ सोचना पड़ता है क्या इधर? कुछ सोचना नहीं पड़ता है, थाली पर क्या बना बनाया आ जाता है, खाने की केवल मेहनत है। चैतन्य ठाकुर हो, बाप सेवा कर रहे हैं, बाप के लाडले हो पर माया के लाडले ना बन जाना, मुरली में है। चौथी निशानी, अकेलापन नहीं, बेसहारा नहीं, मेरे साथ इस संसार की सबसे बड़ी सत्ता है, तुम रूहानी यात्री हो, बाकी सारी यात्राएं तुम्हारी पूरी हो गई, इस यात्रा में बाकी सारी यात्राएं समाई हुई है, धक्के बहुत खा लिए, तन मन को आराम यहां पर मिला है, तन मन को ठिकाना इस यात्रा में मिला है। रोज की मुरली क्या है? अमर कथा, जिसे क्या देता है अमरनाथ? वरदान कौन सा? अमर भव का वरदान देता है। वो लोग तो मरते हैं तो खाली जाते हैं, तुम चोला बदलते हो, भरपूर होकर जाते हो, मालामाल होकर जाते हो, अमर भव के वरदानी हो। प्रत्यक्ष फल तुम्हें मिला है, निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल, शक्तिशाली फल मिला है। परिस्थिति नीचे तुम ऊपर, नया जीवन है, नया जन्म है, श्रेष्ठ आत्माएं हो, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया है। पहली पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, अलग अलग पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं, रात रात भर मिल रहे हैं। कैसी खुशी होगी उस समय आत्माओं को, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, प्रेरणादायी बातें, ज्ञान का एक एक महावाक्य, एक एक वरदान जो मिल रहा है। तो चौथी निशानी, बेसहारा नहीं। चौथी निशानी, हम अकेले नहीं हैं। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, आई फील लोनली व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माय सुप्रीम कंपेनियन। मुझे अकेला तब महसूस होता है जब मैं ये भूल जाता हूं कि मेरा परम साथी स्वयं भगवान है, सुप्रीम कंपेनियन है वो। तीसरी निशानी, रूहानी मौज की अवस्था है। दूसरी निशानी, दूसरी निशानी, दुविधा नहीं, कंफ्यूजन नहीं। पहली निशानी, विजय, सक्सेस, सफलता। तो नंबरवार ना हो, गुणवत्ता सबकी समान हो, नंबरवार नहीं, परसेंटेज नहीं, निश्चय। तो आप सबको काम दे रहे हैं, पहला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से निश्चय होने चाहिए? 21 प्रकार के निश्चय हर एक ने लिखने हैं। उसके बाद उसके सोने से पहले, हाँ ठीक है, सोने से पहले लिख लो। बाबा ने कहा, यह निश्चय बुद्धि तो सीढ़ी है किसकी? नष्टो मोहा की। आगे का चैप्टर है नष्टो मोहा, उसके बारे में बाद में सुनाएंगे, कब पता नहीं, सुना भी दिया कई बार, परंतु ये सीढ़ी मात्र है। उसके बाद पहला, उसके बाद में मधुबन की बातें कही बाबा ने, भगवान का क्या है ये? दर, दाता का दर है, नया वर्ड, नए शब्द, और तीन पार्टियां। ऐसे कैसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे रूहानी मौज में रहने वाली आत्माओं को एक बात छूट गई, दूसरे जो समझते हैं तुम्हारी हार हुई, फिर बाद में वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे, ऐसे हर हार में भी जीत का अनुभव करने वाली आत्माओं में आग समान परिस्थितियों में भी आग नीचे हम ऊपर का अनुभव करने वाली आत्माओं को ऐसे। मास्टर मास्टर सहारे दाता आत्माओं को ऐसे। सदा खुशी में रहने वाले, खुशी में डांस करने वाली आत्माओं को, झूमने वाले आत्माओं को, नाचने वाली आत्माओं को, द डांसिंग मसीहा, डांसिंग अवतार आत्माओं को ऐसे। बेहद के वैरागी आत्माओं को ऐसे। किससे? व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को ऐसे। समर्थ आत्माओं को ऐसे। चैतन्य ठाकुरों को ऐसे। श्रेष्ठ आत्माओं को ऐसे। बाप समान ऐसे। संतुष्ट मणि आत्माओं को ऐसे। सदा हर्षित रहने वाली आत्माओं को ऐसे। हाँ, विश्व सेवाधारी आत्माओं को ऐसे। विजयी आत्माओं को ऐसे। रूहानी मौज में रहने वाली आत्माओं को ऐसे। व्यर्थ से मुक्त हो गया, आकर्षण मुक्त ऐसे। मुरली का बताना है ना? खुशनसीब आत्माओं को ऐसे वरदान ऐसे। नम्रचित, निर्माण और हाजी का पाठ पक्का करने वाली आत्माओं को ऐसे। उपराम निर्मोही, जो यात्री होता है उसका किसी में मोह नहीं होता है, वो यात्री निर्मोही होता है, उपराम होता है, न्यारा होता है, ऐसी न्यारी प्यारी उपराम आत्माओं को ऐसे। अमर भाव के वरदानी आत्माओं को ऐसे। छत्र शक्तिशाली फल खाने वाली आत्माओं को ऐसे। नया जीवन, नया कर्म, नया देश, सब कुछ नया जिन आत्माओं का है ऐसे। छत्र छाया में रहने वाली आत्माओं को बाप ही सहारा है ऐसी आत्माओं को ऐसे। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग से अप्रभावित आत्माओं को ऐसे। हाँ, व्यर्थ का हो गया दो बार। बेहद के वैरागी ऐसे। हार में भी जीत का अनुभव। अब पर इसके पीछे हार के पीछे मत लग जाना, अनुभव करने के लिए जीत का लक्ष्य जीत का ही रखना है। तो ऐसे बहुत सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।